तीन तरह के जो सद्धेतु बताए गए अन्वय व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी और केवलान्वयी, उससे अतिरिक्त जो हेतु है मान उससे भिन्न जो हेतु है वह सब हेतु नहीं, वह हेतु आभास कहलाता है। माने वह अहेतु है, असद हेतु है। इसलिए आपकी पुस्तक में कहा गया अतः अन्य हेत्वाभाषा, माने इन तीन हेतुओं से अन्य जो है भिन्न जो है वह हेत्वाभास होता है, वह सद हेतु नहीं होता। वो कौन कौन है? तो तेच असिद्ध विरुद्ध अनैकांतिक प्रकरण सम कालात्याप दिष्ट भेदात पंचे, उन पांचों का नाम है असिद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, अनेकांतिक हेत्वाभास, प्रकरण सम हेत्वाभास और कालात्याप दिष्ट हेत्वाभास। इस तरह से पांच हेत्वाभास होते हैं। अब पांचों का ये परिचय कराएंगे। तत्र लिंगत्वेन अनिश्चितो हेतु असिद्धः, इसमें पहला जो हेत्वाभास है असिद्ध नाम का हेत्वाभास, वह किसको कहते हैं? तो लिंगत्वेन अनिश्चितो हेतु, लिंग लिंगत्वेन माने लिंग के रूप से जो अनिश्चित हेतु होता है उसको हम असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। लिंग रूप से जो अनिश्चित हेतु हो उसको हम असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। अब ये लिंग रूप से क्या है? तो मैंने बताया था ना कि अनुमान के जो दो अंग हैं व्याप्ति और पक्षधर्मता। तो जिस हेतु में व्याप्ति और पक्षधर्मता ये निश्चित न हो, अनिश्चित हो, असिद्ध हो, उसको हम कहते हैं असिद्ध हेतु। फिर से ध्यान दीजिए, जिस हेतु में व्याप्ति और पक्षधर्मता ये दोनों सिद्ध न हो उसको कहते हैं असिद्ध हेतु। यही है लिंगत्वेन रूपेन अनिश्चितो हेतु, लिंग के रूप से जो अनिश्चित हेतु हो, अर्थात जो हेतु जिस हेतु का की व्याप्ति और जिस हेतु की पक्षधर्मता सिद्ध न हो वह हेतु असिद्ध हेतु है, असिद्ध हेत्वाभास है। तत्र असिद्धा त्रिविधा, उसमें असिद्ध हेत्वाभास जो है असिद्ध नाम का वो त्रिविधा तीन प्रकार का होता है, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्धश्च। आश्रया सिद्ध नाम का हेत्वाभास, स्वरूपा सिद्ध नाम का हेत्वाभास और व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास। इनमें से जो है ना जो प्रथम दो हैं मतलब आश्रया सिद्ध और स्वरूपा सिद्ध, इसमें पक्ष धर्मता अनिश्चित होती है और तीसरा जो है उसमें व्याप्ति जो है अनिश्चित रहती है। तो इस तरह से असिद्ध नाम का हेत्वाभास तीन प्रकार का होता है। अब तीनों का उदाहरण देते हैं। आश्रया सिद्धो यथा गगनार बिंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजार बिंदवत्, ताकि गगन कहते हैं आकाश को, अरविंद कहते हैं कमल के फूल को, तो गगनार बिंदम ये पक्ष है माने आकाश में रहने वाला कमल का फूल, सुरभि ये साध्य है, सुरभि माने सुगंध से युक्त है, अरविंदत्वात् ये हेतु है माने अरविंद होने के कारण, सरोजार बिंदवत ये उदाहरण है, दृष्टांत है माने सरोज अरविंद की तरह, सरोज अरविंद की तरह मतलब सरोवर के कमल की तरह, सरोवर में जो कमल फूल है उसकी तरह। तो क्या हुआ फिर से सुनिए कि गगनार बिंदम सुरभि माने आकाश में रहने वाला जो कमल का फूल है वह सुरभि है माने सुगंध से युक्त है, अरविंदत्वात् अरविंद होने के कारण, सरोजार बिंदवत माने सरोज अरविंद की तरह, सरोवर के कमल की तरह। अब यहाँ जो हेतु दिया गया है ना अरविंदत्वात, ये जो हेतु है यह हेतु नहीं, ये हेत्वाभास है। कौन सा हेत्वाभास है? तो आश्रया सिद्ध हेत्वाभास है, क्योंकि इसका जो आश्रय है, इसका आश्रय कौन है? गगन। वो गगन गगनार बिंद जो है वह आश्रय है इसका। तो कहा कि गगनार बिंद तो होता ही नहीं है, कहीं देखे हैं कि आकाश में कमल फूल हो? क्योंकि आकाश नाम है शून्य का, शून्यम आकाशम, तो शून्य में कहीं कमल का फूल खिले? तो यहाँ जो हेतु है अरविंदत्वात, इसका जो आश्रय है गगनार बिंद, अरविंदत्व किस में रहेगा? अरविंद में रहेगा। वह यहाँ पर कौन है पक्ष? गगनार बिंद है पक्ष। तो गगनार बिंद रूपी पक्ष में अरविंदत्व रूपी जो हेतु है वह असिद्ध है। क्यों असिद्ध है? क्योंकि इसका आश्रय असिद्ध है, माने गगनार बिंद होता ही नहीं है। वही कहते हैं कि अत्र गगनारविंदम आश्रयः, यहाँ गगनारविंद जो है वह आश्रय है। इस हेतु का, किस हेतु का, अरविंदत्व रूप हेतु का, स्वच नास्ति है वह, और वह आश्रय तो वस्तुतः है ही नहीं, इसलिए अरविंदत्वात् अरविंदत्व जो हेतु है यह आश्रया सिद्ध हेत्वाभास है। दूसरा उदाहरण दिया स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास का कि शब्द अनित्य चाक्षुसत्वात् घटवत्। शब्द यहाँ पक्ष है, अनित्य जो है साध्य है, और चाक्षुसत्वात् यह हेतु है, और घटवत् यह उदाहरण हो गया। चाक्षुष कहते हैं कि चक्षुष के द्वारा, चक्षुरिंद्रिय के द्वारा जिसका ज्ञान हो उसको कहते हैं चाक्षुष, और चाक्षुष में रहने वाला जो धर्म हो गया वो हो गया चाक्षुसत्व, पंचमी में हो गया चाक्षुसत्वात्। माने शब्द जो है वह अनित्य है क्योंकि वह उसमें चाक्षुसत्व रहता है, किसकी तरह, घट की तरह। अब यहाँ हेतु कौन है, अथवा चाक्षुसत्वम हेतु, चाक्षुसत्व हेतु है, और वह हेतु स्वच शब्दे नास्ति है, वह जो शब्द रूपी पक्ष है उसमें नास्ति है, वह तो रहता ही नहीं है, क्योंकि तो शब्द में कौन सा श्रावणत्व तो रहता है, चाक्षुसत्व थोड़े रहता है, शब्द को हम सुनते हैं, शब्द को देखते थोड़े हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है स्वरूपा सिद्ध नाम का ये हेत्वाभास है, कौन हेतु है, अचाश ये चाक्षुसत्व रूप जो हेतु है यह स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास है। वही कहा कि स्वच शब्दे नास्ति एव, वह शब्द रूप पक्ष में नहीं है, तस्य श्रावणत्वात्, शब्द तो वास्तविक में उस शब्द में श्रावणत्व रहता है, चाक्षुसत्व नहीं रहता है। तो इस तरह से स्वरूपा सिद्ध नाम का हेत्वाभास जो है ना, किसको कहते हैं, तो जिसमें जिस हेतु का पक्ष में अभाव हो वह स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास हुआ। यहाँ पर पक्ष है कौन, शब्द, उस शब्द रूपी पक्ष में हेतु जो है चाक्षुसत्व, उसका अभाव है, इसलिए इसका नाम हो गया स्वरूपा सिद्ध। तीसरा जो असिद्ध हेत्वाभास है उसका कहते व्याप्यत्वा सिद्धस्तु द्विविधा, वह व्याप्यत्वा सिद्ध जो है ना दो प्रकार का होता है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि दो जो हेत्वाभास हैं स्वरूपा सिद्ध और ये आश्रया सिद्ध और स्वरूपा सिद्ध, उसमें जो है ना मैंने पक्ष धर्मता सिद्ध नहीं होती है, और तीसरा जो हेत्वाभास है ये व्याप्यत्वा सिद्ध, इसमें व्याप्ति सिद्ध नहीं रहती है, इसलिए इसको हम हेतु नहीं कह करके हेत्वाभास कहते हैं। यह जो व्याप्यत्वा सिद्ध है या दुविधा दो प्रकार का होता है, एक वो व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात्, एक जो व्याप्यत्वा सिद्ध है उसमें व्याप्ति का ग्राहक प्रमाण नहीं मिलता है, व्याप्ति ग्राहक प्रमाण का अभाव होता है, और बिना जहाँ प्रमाण नहीं होगा वहाँ व्याप्ति का ग्रहण कैसे होगा, ग्रहण माने ज्ञान, व्याप्ति का ज्ञान कैसे होगा। तो व्याप्ति ज्ञान के प्रमाण अभाव के कारण जो है इसका नाम पड़ा व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास। अपरस्तु उपाधि सद्भावात, और दूसरा जो व्याप्यत्वा सिद्ध होता है वह उपाधि सद्भाव के कारण होता है, माने उपाधि वह औपाधिक जो है वहाँ पर व्याप्ति रहती है, किसी उपाधि विशेष के कारण व्याप्ति रहती है, इसलिए वह भी जो हेतु है वह व्याप्यत्वा सिद्ध कहलाएगा। तो व्याप्यत्वा सिद्ध कहलाने के लिए एक में व्याप्ति ग्राहक प्रमाण का अभाव होना चाहिए, और दूसरा जो व्याप्यत्वा सिद्ध है उसमें उपाधि सद्भाव होना चाहिए, माने उसको औपाधिक होना चाहिए। तो अगर औपाधिक हेतु है अथवा व्याप्ति ग्राहक प्रमाण अभाव वाला हेतु है तो वह हेतु हेत्वाभास कहलाएगा, किस नाम से, व्याप्यत्वा सिद्ध नाम से। तत्र प्रथमो यथा, उसमें प्रथम जो हेत्वाभास है कौन, व्याप्तिक ग्राहक प्रमाण अभाव वाला हेत्वाभास, उसका उदाहरण है शब्द क्षणिक सत्वात्, शब्द जो है वह क्षणिक है, सत्वात् माने सत्व के होने से, यत सत तत् क्षणिकम, जो सत होता है वह क्षणिक होता है, यथा जलधर पटलम, जैसे जलधर कहते हैं मेघ को, पटल कहते हैं घटा को, बादलों का की जो घटा है उसको कहते हैं जलधर पटलम, तथा च शब्द आदि, और जलधर पटल की तरह जो है वह शब्द आदि भी है। तो यहाँ जो अनुमान वाक्य बताया गया है इसमें शब्द हो गया पक्ष, क्षणिका हो गया साध्य, सत्वात हो गया हेतु, यत सत तत क्षणिकम, यथा जलधर पटलम, ये हो गया क्या प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, ये उदाहरण हो गया, इसमें व्याप्ति भी बताया और उदाहरण भी बताया, और तथाच शब्दादि ये निगमन हो गया। तो यहाँ पर जो हेतु बताया गया है सत्वात रूप हेतु जो है वह व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास है, क्योंकि इसमें व्याप्ति ग्राहक प्रमाण का अभाव है। न च सत्व क्षणिकत्वयो व्याप्ति ग्राहकम प्रमाणम अस्ति। इसमें क्षणिकत्व रूप जो साध्य है और सत्व रूप जो हेतु है, इन दोनों की व्याप्ति को का ग्राहक प्रमाण नहीं मिलता है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो यह प्रमाण सिद्ध कर दे कि जो सत्व जिसमें सत्व रहता है वह क्षणिक रहता है, क्योंकि आकाश है, काल है, दिक है, आत्मा है, इन सब में सत्व है और ये सब क्षणिक नहीं है, ये तो नित्य है। तो इस तरह से इसमें व्याप्ति सत्व और क्षणिक के बीच में व्याप्ति ग्राहक कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर सत्व नाम का जो हेतु है वह व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास है। तो न च सत्व क्षणिकयो व्याप्ति ग्राहकम प्रमाणम अस्ति। सत्व और क्षणिक की व्याप्ति जो है उसका ग्राहक माने बोध कराने वाला कोई प्रमाण यहाँ नहीं है। दूसरा जो व्याप्यत्व सिद्ध नाम का हेत्वाभास है वह कौन था? उपाधि सद्भाव माने उसको उपाधिक जो है जहाँ हेतु है वह व्याप्यत्व सिद्ध होता है। उसका उदाहरण दिया सोपाधिकतया सत्वस्य व्याप्तत्वा सिद्धौ उच्यमानायाम क्षणिकत्वम अन्य प्रयुक्तम इति अभ्युपगतम स्यात्। ताकि इस हेतु को जो है सत्व नाम के हेतु को आप सोपाधिक हेतु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सत्वम और क्षणिकत्वम जो है इन दोनों में जो है औपाधिक हेतु नहीं रहता है। इसलिए यह जो है ना पहला जो है व्याप्ति ग्राहक प्रमाण अभाव वाला जो है व्याप्यत्व सिद्ध वही यहाँ माना जाएगा। वही का सोपाधिकतया सत्वस्य व्याप्यत्व सिद्ध हो माने सत्व को सोपाधिक रूप से व्याप्यत्व सिद्ध उच्यमान। अगर व्याप्यत्व सिद्ध उच्यमान करेंगे माने व्याप्यत्व सिद्ध बताना चाहेंगे तो क्षणिकत्व अन्य प्रयुक्तम इति अभ्युपगतम स्यात्। तो क्षणिकत्व नाम का जो साध्य है वह अन्य प्रयुक्त होना चाहिए माने सोपाधिक होना चाहिए, वो जो कि यहाँ पर सोपाधिक नहीं है। द्वितीयो यथा, अब द्वितीय जो व्याप्यत्व सिद्ध है सोपाधिक हेतु वाला उसका उदाहरण दिखाते हैं। यथा कत्वंतरवर्तनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात् क्रतु बाह्य हिंसावत्। क्रतु अंतर्वर्तनी हिंसा, क्रतु कहते हैं यज्ञ को, अक्रतु अंतर्वर्तनी माने यज्ञ में होने वाली हिंसा, उसको कहेंगे कत्वंतरवर्तनी हिंसा। यहाँ पर कत्वंतरवर्तनी हिंसा पक्ष है, अधर्म साधनम साध्य है, हिंसात्वात् हेतु है, अक्रतु बाह्य हिंसावत जो है यह उदाहरण है। इसका मतलब ये हुआ कि यज्ञ में होने वाली हिंसा जो है वह अधर्म का साधन होता है माने साधन माने कारण, अधर्म का कारण होता है हिंसात्वात्, क्योंकि उसमें हिंसात्व रहता है। कैसे? तो क्रतु बाह्य हिंसावत, क्रतु माने यज्ञ से बाहर की हिंसा की तरह माने जीभ के स्वादु के लिए जब हम हिंसा करते हैं, छाग सबकी बलि देते हैं तो उसमें जैसे अधर्म साधनत्व रहता है माने अधर्म माने पाप, वह पाप का कारण बनता है, वैसा ही जो है क्रतु में होने वाली हिंसा भी जो है वह पाप का कारण है। यहाँ जो अनुमान का वाक्य बताया गया है यह भी यहाँ पर हेतु जो दिया हिंसात्वात् रूप हेतु, हिंसात्व हेतु दिया है, यह हेतु वस्तुतः हेत्वाभास है। किस नाम से? व्याप्यत्व सिद्ध नाम का हेत्वाभास है। इसमें कौन सा व्याप्यत्व सिद्ध है? तो द्वितीय है माने सोपाधिक हेतु है। यहाँ पर उपाधि क्या है? तो निषिद्धत्व, ये पहले भी मैं कभी बता चुका हूँ कि निषिद्धत्व रूप उपाधि रहती है। तो वही कहा कि अत्र ही अधर्म साधनत्व हिंसात्व न प्रयोजकम, यहाँ जो अधर्म साधनत्व रूप साध्य है उसमें हिंसात्व जो है वह प्रयोजक नहीं बनेगा, हिंसात्व जो है वह हेतु नहीं बनेगा। किंतु निषिद्धत्व एव प्रयोजकम उपाधि, यहाँ जो है निषिद्धत्व ही जो है प्रयोजक बनेगा और वह निषिद्धत्व जो है वही यहाँ पर उपाधि है। इस तरह से यहाँ पर सोपाधिक हेतु हिंसात्व के रहने के कारण ये दूसरा जो है व्याप्यत्व सिद्ध कहलाएगा। तथा ही साध्य व्यापकत्वे सति साधनाव्यापक उपाधि इति उपाधि लक्षणम। परीक्षा में ये पूछ सकते हैं कि उपाधि का लक्षण क्या है, तो यही लिखना है कि साध्य व्यापकत्वे सति मान जो साध्य का जिसमें साध्य का व्यापकत्व रहे और साधन अव्यापक और साधन का अव्यापकत्व रहे उसको हम उपाधि कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो है ना उपाधि कौन है? निषिद्धत्व रूप उपाधि है। तो और साध्य कौन है? साध्य है अधर्म साधनत्व, तो अधर्म साधनत्व रूप साध्य का यह निषिद्धत्व जो है इसमें व्यापकत्व रहता है, और साधना व्यापकत्व भी रहता है निषिद्धत्व में। कौन कैसे, तो साधनत्व क्या है, साधनत्व है हिंसात्व, उसका जो है अव्यापकत्व रहता है किसमें, निषिद्धत्व में। तो इसको समझने के लिए, उपाधि को समझने के लिए आपको साध्य साधन समझना होगा, व्यापक व्यापकत्व और अव्यापकत्व समझना होगा। तो साध्य हो गया यहाँ पर धर्म साधनत्व, साधन हो गया यहाँ पर हिंसात्व, ठीक है। तो साध्य का व्यापकत्व रहना चाहिए जो कि निषिद्धत्व में है, और साधन जो है उसका अव्यापकत्व रहना चाहिए जो भी निषिद्धत्व में है। आप जानते हैं कि शास्त्र में जो निषेध किया गया हिंसा के बारे में, वो वैद्य की हिंसा के लिए निषेध नहीं है, वो स्वाद के लिए टेस्ट के लिए जो हिंसा करते हैं उसका निषेध है। तो निषिद्धत्व जो है वो सभी हिंसा के लिए जो है ना अधर्म साधनत्व का जो है ना प्रयोजक नहीं होगा। तो तत्वंतरवर्तिनी जो हिंसा है वह हिंसा अधर्म साधन है, उसमें जो हेतु दिया है हिंसात्व रूप हेतु, माने हिंसा होने के कारण वह अधर्म साधन है, ऐसी बात नहीं है। वह अधर्म साधन इसलिए है, अधर्म साधन कोई इसलिए होता है क्योंकि उसमें निषिद्धत्व रहता है, माने शास्त्र के द्वारा निषेध किया गया रहता है, इसलिए वह अधर्म साधन होता है। यहाँ जो हेतु दिया हिंसात्व वो गलत हेतु है, यहाँ पर हेतु क्या होगा, निषिद्धत्व हेतु होगा, ठीक है। तथा ही साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापक उपाधि इति उपाधि लक्षणम, उपाधि का लक्षण है कि जो साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो, इस तरह का जो लक्षण है न निषिद्धत्व, निषिद्धत्व में ये लक्षण नहीं जाता है। क्यों, तो निषिद्धत्व ही साध्यस्य अधर्म साधनत्वस्य व्यापकम, निषिद्धत्व जो है यहाँ पर साध्य कौन है, अधर्म साधनत्व है, उसका यह व्यापक ही है, जबकि साध्य का अव्यापक होना चाहिए उपाधि को। यहाँ पर जो है ना निषिद्धत्व जो है साध्य धर्म साधनत्व का व्यापक है, तो साधन का अव्यापक न होने के कारण इसमें निषिद्धत्व में उपाधि का लक्षण नहीं जाता है। तो तच्च नास्ति निषिद्धत्व, निषिद्धत्व ही साध्यस्य अधर्म साधनत्वस्य व्यापकम्, यतो यत्र यत्र अधर्म साधनत्व, जहाँ जहाँ अधर्म का साधनत्व रहता है तत्र अवश्यम निषिद्धत्व अभी, वहाँ अवश्य रूप से निषिद्धत्व भी रहता है। एवं साधनम हिंसात्व न व्यापनोति, साधन हिंसात्व जो है वह निषिद्धत्व न व्यापनोति, वह निषिद्ध को व्याप्त नहीं करता है, मान निषिद्धत्व का वह व्यापक नहीं होता है। नहीं यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र अवश्यम निषिद्धत्वम, जहाँ जहाँ हिंसात्व रहता है वहाँ वहाँ अवश्य निषिद्धत्व नहीं रहता है। जैसे यज्ञीय पशु हिंसाया निषिद्धत्वाभावात्, यज्ञीय जो पशु हिंसा है उसमें निषिद्धत्व का अभाव रहता है। तदेवम निषिद्धत्वस्य उपाधि सद्भावात्, इस तरह से यहाँ पर ये जो कत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात् जो अनुमान वाक्य है, इसमें निषिद्धत्व जो उपाधि है इसका सद्भाव है, माने यह उपाधि रहती है। अन्य प्रयुक्त व्याप्ति उपजीवी हिंसात्वम व्याप्यत्वा सिद्धमेव, इस तरह से अन्य प्रयुक्त जो व्याप्ति है, माने निषिद्धत्व प्रयुक्त जो व्याप्ति का यह उपजीवी है हिंसात्व, इसलिए यह व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास हुआ। आज का पाठ यहीं रखते हैं।